ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका 19B के गोल्फ व्यू कॉन्डोस के फ्लैट आवंटियों को कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू की। नई दिल्ली में शहरी गैस वितरण सम्मेलन 2024 का शुभारंभ हुआ। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कल दिल्ली में किया जाएगा और पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में और फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर किया। श्री केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में इसी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
श्री सचदेवा ने कहा कि कल हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध बताने के बाद अरविंद केजरीवाल को पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए अब दिल्ली की जनता भी मांग कर रही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले उन्हें इशारा दे चुका है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसी को बैठा लें, लेकिन वह दिल्ली की सरकार को चलने दें, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले मार्च से लेकर अभी तक एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और प्रशासन ठप है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्धारित समय पर द्वारका 19B के गोल्फ व्यू कॉन्डोस के फ्लैट आवंटियों को कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कब्जा उन्हीं आवंटियों को दिया जा रहा है जिन्होंने फ्लैट की पूरी कीमत का भुगतान कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया है कि आवंटियों को गुणवत्तापूर्ण फ्लैट समय पर उपलब्ध कराने में कोई कसर न छोड़ी जाए। प्राधिकरण ने आवंटियों से अनुरोध किया है कि वे कब्जा पत्र जारी होने के बाद अपने संबंधित फ्लैटों का दौरा करें। प्राधिकरण ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी देते हुए कहा कि कब्जा पत्र जारी होने के बाद इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से फ्लैट का निरीक्षण किया जाएगा और यदि कोई कमी नजर आती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आई, जे, के और एल टॉवर्स के मामले में इन फ्लैटों के पूरा होने में थोड़ा अधिक समय लगेगा और प्राधिकरण ने स्वतः अंतिम किस्त के भुगतान की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने आज नई दिल्ली में शहरी गैस वितरण सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं में नियमन, नीति और वित्त संबंधित चर्चा की गई। फिक्की के अनुसार सरकार अगले 5 वर्षों में गैस बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगभग 3 ट्रिलियन रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसके अंतर्गत 17,000 से अधिक सीएनजी स्टेशन, लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और लगभग 1,000 एलएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के सदस्य गजेंद्र सिंह ने कहा कि औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के बीच सीएनजी की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि संगठनों को आम आदमी के बीच पीएनजी के फायदे बताने चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी कैसे ले सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। नई दिल्ली में कल 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निर्यातक, डिजाइनर और देशभर के 1,000 से अधिक बुनकर शामिल होंगे। इस दौरान देशभर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समारोह का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राजधानी के भारत मंडपम में 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 कल से शुरू होने जा रहा है। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। पुस्तक मेले के माध्यम से सभी उम्र के लोगों के बीच पठन पाठन और लेखन को प्रोत्साहित करने में ये मेला महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये मेला इस महीने की 11 तारीख तक चलेगा। पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस 120 कमरों वाला 5 मंजिला स्कूल लगभग बनकर तैयार है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री सुश्री आतिशी ने यहां निरीक्षण कर अंतिम चरण में चल रहे काम का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहे। इस मौके पर सुश्री आतिशी ने कहा कि इस शानदार नए स्कूल की बिल्डिंग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली की घनी आबादी के बीच ये स्कूल 8,000 बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का हब बनेगा। नए स्कूल से मंडोली, सबोली, सुंदर नगरी, बैंक कॉलोनी, हर्ष विहार, नंद नगरी इलाकों के स्कूलों पर छात्रों का दबाव कम होगा। 120 कमरों वाला नया स्कूल स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, शानदार लैब्स, एक्टिविटी रूम, लिफ्ट सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज ने समर्थ भारत, कौशल युवा, सशक्त भारत के साथ मिलकर एक कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था बेकरी और नेल आर्ट। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल और उद्यमिता की जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही मोती बनाने की प्रक्रिया, सेरीकल्चर, डीएनए बारकोडिंग आदि भी जोड़े गए हैं। इस अवसर पर समर्थ भारत के न्यासी और संस्थापक भारत भूषण, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के संस्थापक रमेश अग्रवाल और भारती कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर कविता शर्मा सहित अन्य सम्मानित अतिथि उपस्थित थे। इस आयोजन में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख कॉलेजों के प्राचार्यों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर समर्थ भारत के न्यासी और संस्थापक भारत भूषण ने कहा कि यदि आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं तो नौकरी मांगने वाले बनने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने स्व विकास के साथ साथ राष्ट्र विकास की बात कही। कार्यक्रम में 78 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें भारती कॉलेज के अलावा 7 अन्य कॉलेजों के छात्र और 3 गृहणियां भी शामिल थीं। फरीदाबाद के उपायुक्त और जवाहर नवोदय विद्यालय के चेयरमैन विक्रम सिंह ने आज कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय मोठू का फरीदाबाद के सत्र 2025-26 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
इच्छुक विद्यार्थी आगामी 16 सितंबर तक अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा सकते हैं। श्री सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नियमानुसार छात्र छात्राओं का आरक्षण आरक्षित होगा। सत्र 2024-25 में फरीदाबाद जिला में कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे सरकारी मान्यता प्राप्त एवं गैर सरकारी संस्थान के विद्यार्थी जिनकी जन्म तिथि 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच है वह आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा आगामी 18 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
जामिया मिलिया इस्लामिया के दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान ने बताया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इच्छुक छात्र अधिक जानकारी के लिए जामिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने आज विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ एक बैठक में उत्तर रेलवे के कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में गतिशीलता में वृद्धि और अन्य विकासात्मक कार्यों और माल लदान जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार समीक्षा बैठक में बताया गया कि उत्तर रेलवे ने समय पालन बद्धता के बेहतर रिकॉर्ड को बनाए रखा है और रेलगाड़ियों के समय से चलने पर विशेष ध्यान दिया है। संरक्षा को उत्तर रेलवे की प्राथमिकता बताते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि गतिशीलता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर नियमित और कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। उन्होंने मंडलों को गतिशीलता बढ़ाने संबंधी कार्यों में तेजी लाने और कार्यों की प्रगति की जांच करने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। श्री चौधरी ने रेल परिचालन में मानवीय भूलों को न्यूनतम करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों को रेलगाड़ियों की समय पालन बद्धता में और सुधार करने और संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए माल लदान की गति को बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम की फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से हराया। सेमीफाइनल मुकाबला आज रात खेला जाएगा। भालाफेंक में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए 89.34 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में जगह पक्की की। किशोर जेना क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गए। भारत की पुरुष हॉकी टीम का सामना आज सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन जर्मनी से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल से प्रसारित किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरपर्सन डॉ MP शुक्ल और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक राज नारायण कौशिक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि किसानों द्वारा धान की फसल की कटाई के दौरान धान की पराली जलाने की पाबंदी को सुनिश्चित करना चाहिए। जिले के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि प्रशासन किसानों को धान की पराली जलाने से रोकने के बारे में जागरूक करने के साथ उनकी हर संभव सहायता भी करेगा। जिला में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी टीमें बनाई जाएंगी। जिले में धान की कटाई के दौरान पराली जलाने की घटनाएं रोकने और किसानों की जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान को समझाने के बाद भी उन्होंने पराली को जलाया तो उनके खिलाफ जुर्माना के अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर के SDM, श्रम विभाग, राजस्व विभाग और एक NGO के सहयोग से भजनपुरा क्षेत्र के गामरी गांव में एक जूट बैग बनाने वाली फैक्ट्री और प्रिंटिंग के काम में करने वाले 18 बच्चों को बचाया गया। इस मामले में 9 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बाल कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये अधिकांश बच्चे 11 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड राज्यों के रहने वाले हैं। दिल्ली के जौनपुर में 4 टेंट गोदामों में भीषण आग लगने से 4 विंटेज कारें जल गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग आधी रात करीब 1:56 पर लगी और सुबह 7:30 तक जारी रही। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक ऑपरेशंस अनुराग गर्ग ने कल नई दिल्ली में पहली महिला पर्वतारोहण टीम को उत्तराखंड स्थित माउंट मुकुट पूर्व के अभियान के लिए रवाना किया। 12 महिला पर्वतारोहियों का यह दल 23,392 फीट ऊंचे मुकुट पूर्व की चोटी पर चढ़ाई करेगा और वहां राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा बल के ध्वज को फहराएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि BSF महिलाओं और पुरुषों को ऐसे और अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब महिला पर्वतारोहियों का दल 23,000 से 24,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहण करेगा। उन्होंने कहा कि BSF कई वर्षों से पर्वतारोहण को बढ़ावा दे रहा है और बल के कई सदस्यों ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। श्री गर्ग ने कहा कि BSF ने 2 बार माउंट एवरेस्ट सहित अन्य 48 पर्वत शिखरों पर झंडे फहराए हैं। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहते हुए 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका 19B के गोल्फ व्यू कॉन्डोज के फ्लैट आवंटियों को कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू की। नई दिल्ली में शहरी गैस वितरण सम्मेलन 2024 का शुभारंभ हुआ। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कल दिल्ली में किया जाएगा। और पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में और फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।